उसके बाद में सीतारण ये सीतारण दिखाया, उसके संबंध में बोलू न उसके संबंध में बोलू, और मैं सोचता था जैसे ग्रह के संबंध में सत्य के संबंध में इम्पोर्टेंट है, बीच में डाल देंगे बहुत समय के लिए अच्छा तो जितना हो सके। भक्ति किसको कहते हैं पहले समझे, जब हमारी मानसिक वाचिक और कायिक सब प्रकार की चेष्टाएं समझ रही हैं, वाचिक जलने कायिक मानसिक ये तीन चीजें, ये सारी चेष्टाएं जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रति प्रदान करने के लिए जब होती है तो इसके पक्ष अपने लिए नहीं और के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कायिक वाचिक मानसिक जितने भी चेष्टाएं हैं जब तो इसको भक्ति का, क्योंकि जब यही चेष्टा जितने प्रकार की हमारी अभिलाषाएं हैं कृष्ण की सेवा छोड़कर एकमात्र कृष्ण की सेवा के लिए की जाए और जितनी अभिलाषाएं छोड़ दी जाए और कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत होम साध है इसके द्वारा भक्ति भक्ति ही न हो और किसी भक्तिमान जिसे भक्तिमान जो व्यक्ति है गुरु या वैष्णव उनके अनुगत्य में हो और निरंतर हो
तो गुरु मोर इम्पोर्टेंट गुरु जी तुमको तो वही भी सिखाएंगे किस प्रकार भक्ति करनी है कर, वो भी रास्ता बताएंगे,
गुरु भी भक्त है,
गुरु तो गुरु मोर इम्पोर्टेंट
गुरु ये गुरु जो भक्त है भक्त में प्रधान है उनको गुरु कहा जाता है, इसलिए भक्त को भी इसमें ले लिया
हाँ तो
भक्तों के अनुगत्य में ये भक्ति होगी और निरंतर की मई होगी निरंतर, अब एक घंटा ये किया एक घंटा संसार का एक घंटा अपने लिए किया उसके लिए किया भगवान के लिए ऐसा नहीं, निरंतर की मई निरंतर हमारी कायिक वाचिक मानसिक भावनाएं अन्नाभिलाषिता को ज्ञान कर्म योग के द्वारा भक्ति में रह करके शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य में निरंतर गति होती रहे तो इसको उत्तमा भक्ति का, इस चीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति एक होने पर भी जैसे प्रेम एक होने पर भी सख्य प्रेम राष्ट्र प्रेम मधुर प्रेम वात्सल्य प्रेम ये हो जाता है, पति के साथ में एक प्रकार का प्रेम सखा के साथ में एक प्रकार का साधारण लोगों से पशु पक्षियों से एक प्रकार का प्रेम एक ही प्रेम भिन्न स्तर में
स्वरूप भिन्न हो गए
स्वरूप भिन्न नहीं हुआ प्रेम एक ही है
प्रेम एक ही है
बाहरी तरफ से वो
आवरण चेंज हो गए
बाहर से वो दिखता है ऐसा किंतु प्रेम
एक ही
वो बहुमुखी होता है प्रेम एक ही प्रेम बहुत प्रकार अलग अलग स्तर है अलग अलग प्रकाशित होने का उसका ये कहीं घनी मूत है कहीं नहीं एक ही ये बिजली लाइट जला रही है कभी ठंडा कर रही है कभी गर्म कर रही है एक ही बिजली किंतु कहीं गर्मी कहीं दे रही है कहीं आग जला देती है कहीं तो खूब ठंडा पैदा कर देती है एक बिजली से कभी प्राणों को हर लेती है कभी प्राणों को संजीवनी दे देती है उसके उपयोग पर निर्भर उसी प्रकार से इस प्रेम का इस भक्ति का जब एक एक तरह से प्रकाशित होती है एक एक व्यक्ति में प्रकाशित होती है तो क्या सा रूपांतर उसमें हो जाता है एक ही रूप क्योंकि अंतर हो जाता है एक पानी में पानी को ले लो एक हरे बोतल में दे दो एक काले बोतल में दे दे, एक लाल बोतल में दे, तो ऊपर से पैसा ही देखेगा कि पानी एक पानी में नहीं दे दो, एक पानी में नमक दे दो, एक पानी में मीठा दे दो, तो क्या होगा?
पानी वो
ये सब चीजें क्योंकि प्रेम एक ही प्रकार का माई स्वभाव है, जिनके विभिन्न स्तरों के कारण विभिन्न बहुमुखी होने के कारण एक ही प्रकार का केस है। इसमें किसी ने लंबी चोटी रख दी, किसी ने जूठ ली, किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने शंकर जी वहाँ पर बना लिए, किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा इधर में तो रखा, इधर में थोड़ा सा काट करके इधर में बढ़ा दिया, जैसे कैसे एक ही केस की विभिन्न प्रकार से प्रकार वैसे ही भक्ति एक ही प्रकार की कृष्ण के प्रति तन मन वचन से और भावना से,
शुद्ध भावना के साथ, सद्भावना के साथ,
सब इसको भक्ति कहा जाए, जिसमें और कोई अभिलाषा न हो, ज्ञान कर्म जो के द्वारा वो आच्छादित न हो, किंतु अन्य अभिलाषा भी नहीं, ये तो हुआ सुधा अंतिम भक्ति। इसमें जब हम इसका साधन करते हैं तो कोई एक रूप से करता है, कोई दूसरे रूप से करता है, कोई तीसरे रूप से। जब भगवान का नाम रूप गुण मुख से उच्चारण करता है, पहले सुनता है, तो इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। इसी का जब कीर्तन करता है तो इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। जब इसी को स्मरण करता है तो स्मरण भक्ति कहते हैं। जब कृष्ण के लिए जहाँ पर उनका जन्म इत्यादि हुआ वहाँ पर जाते हैं तो इसको पद सेवन करते हैं। उनको बात भाव से जब कृष्ण को इसी प्रकार से सब सेवा करता है, बात भक्ति करते हैं। जब मुख से भगवान की अन्य प्रशंसात्मक बातों को स्तव और स्तुति से उनको आकृष्ट करते हैं, तब उसको वंदना करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और प्रभु के साथ में सख्त भाव से रख करके उनकी जब सेवा करते हैं, सख्त करते हैं, और अंत में जब तक कुछ निवेदन करते हैं उनके चरणों में अपने को, तो आप निवेदन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सप्तम ये ये कुछ लोग मेधा भक्ति को दूसरे रूप में लेते हैं अद्वैता भी, क्योंकि हम लोग इसमें तुलसीदास जी ने थोड़ा सा रूपांतर के साथ में नौधा भक्ति को दिया है। इसके अधिकांश भावों को तो लिया है, किंतु दो एक चीज को उन्होंने उलट उलट दिया, क्योंकि हम लोग भागवत को भी भागवत में ये है, इसी को चैतन्य महाप्रभु और उनको हम लोग नौधा भक्ति मैंने एक ही भक्ति नौ प्रकार से जब की जाती है तो इसको नौधा नैमित्तिक भक्ति हुई नित्य भक्ति में सनातन और नित्य भक्ति है, उसमें भगवान को नित्य माना जाता है और जो भक्ति करता है उसको भी नित्य माना जाता है और जो भक्ति करता है वो भी नित्य माना जाता है, तब ये नित्य भक्ति है। और जिसने भगवान को तो नित्य माना गया जीव को भी नित्य माना गया, किंतु अपने मनमानी भावों से जब उनकी साधना की जाती है तब ये नित्य भक्ति से नित्य और अनित्य भक्ति एक है, अनित्य भाव है, अनित्य धर्म। जब भगवान की नित्यता नहीं, जीवों की नित्यता नहीं, भक्ति की नित्यता नहीं, ऐसे ही कुछ करते हैं तब वो अनित्य जैन धर्म में इसको बहुत साफ करते हैं।
लेकिन इसमें
दो बातें हैं, उसमें जय जय बताई है जो पहला संख्या है कि भगवान को भी नित्य मान रहा है, जीव को भी अपने को नित्य मान रहा है और उससे नित्य संबंध के लिए जो क्रिया की आ रही है, लेकिन उसके लिए साधन में अगर भौतिक इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसको नित्य ही माना जाए, जैसे अर्चन कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, ये धर्म का विचार है।
जैसे तो पहले
मिला है कि पुस्तक
हैं, मेरे पास एक पुस्तक है।
क्या नाम?
वो तो मैं खुद ही वहाँ से उठा के लेते हैं। मैंने तो वो पढ़ लिया।
वो किसके पास में? बात तो उसको मापो तो दूसरे बार भी डालो, तीसरे भी डालो, आ है तो नहीं है वो दुख गया।
एक बार के बनने में समझ में नहीं आती।
नहीं आएगी, दो बार में भी, तीन
दो बार में भी नहीं आएगी।
तो तुम बताया तो था, हम नहीं पाते हैं। बस आपने लक्ष्मी से बताया ना, कल बताया जन्मे का हम नए पाते हैं। गुरु परंपरा को हम नए पाते
हैं। अन्य
आम नाय, आम नाय,
आम नाय,
ये संस्कृत है। तो गुरु परंपरा की धारा को हम नए पाते हैं। ब्रह्मा से लेकर के अब तक हम लोगों की जो गुरु परंपरा की धारा चल रही है उसको हम नए पाते हैं। अब उसमें अमनाय वाक्य, अमनाय वाक्य कहते हैं जिसको गुरु परंपरा ने स्वीकार किया है, जिन शास्त्रों को, जिन वाणियों को, जिन शास्त्र के वाक्यों को, उसको हम नए पाते हैं। हम लोगों को गुरु परंपरा ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को और एक सौ आठ उपनिषदों को, 18 पुराणों को, महाभारत को, रामायण को और उनके अनुगत जितने शास्त्र हैं आज तक के, जैसे कोई कमी से शामिल की, गीता, भागवत, महाभारत का एक अंश, श्रीमद् भागवत, ये सब अन्याय वाक्य हैं। इन अन्याय वाक्यों में भी तथ्य से श्रीमद् भागवत को माना है। अखिल प्रमाणों में श्रेष्ठ और निर्मल प्रमाण श्रीमद् भागवत, इसे हम लोगों की गुरु परंपरा ने श्रीमद् भागवत को अमल और प्रामाणिक माना है। किसी विषय में भी कोई संदेह होगा तो वेदों में, वेदों की बात मानेंगे, कब मानेंगे? यदि भागवत के अनुसार होगा तो हम नहीं मानेंगे। ये उपनिषदों की बातें यदि भागवत के अनुकूल हैं, सब लोग ये देखेंगे भागवत के अनुकूल होने के, और जहाँ पर सब आपस में विवाद मानते हैं, मैंने लड़ी झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर श्रीमद् भागवत जो पढ़ते हैं। और दूसरी बात है, भागवत के अनुकूल यदि उनमें है तो स्वतः सिद्ध मैंने स्वयं भगवान ने कहा है, वे उपनिषद सब उनसे निकले हैं, किसी मनुष्य का बनाया जा नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान ने बनाया है, उन्हीं के मुख से या किसी प्रकार के स्वांश से नहीं, इसलिए ये नित्य है, अनंत है और अनादि है, इसको कोई पौरुष ने, पुरुष ने नहीं बनाया, ये अपौरुष है, असत भगवान ने। इससे कोई भी बात युक्ति के द्वारा, किसी भी विषय के द्वारा खंडन नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ मूर्ख मनुष्य हैं जो कि कभी वेद से पढ़े नहीं और गुरु से कहे नहीं, वो इन चीजों को समझ नहीं पाते। जैसे सच बोलो है ना, अब सच बोलने में वेदों ने कहा कि सच बोलो, किंतु वेद सुन करके बोलो। एक गाय जा रही है गली और उसको एक कसाई ने तोता जी से पकड़ करके उसको काटेंगे, उसे पकड़ने दौड़ा और गाय भगी, और एक व्यक्ति ने देखा, यदि कसाई ने पूछा जी इधर गाय भगी आपने देखा, यदि कहता है कि हाँ मैंने देखा तो ये ठीक है, देखा तो सत्य ये जा रही है, किंतु यदि कहता है कि इसे गाय गई और उसको पकड़ कर उसने काट दिया तो ये विचार उसका पाप लगेगा, यदि वो कहेगा कि मैंने अरे देखा उधर में गई उल्टा दिशा में बदला, उधर में गया इधर गाय, किसी को प्राण बचाने के लिए विवाह में एक लड़की ने कुछ की है, अभिवाह वाले आए उन्होंने कुछ बात सब भी कह दी, इस तरह से समय समय पर किसी भी प्राणी की रक्षा करने के लिए झूठ जैसा कुछ समझ नहीं आता है। जैसे विश्व को रक्षा करने के लिए अधर्म से कृष्ण ने कहा अस्वस्थामा मारा गया ये कहो, ये परम सत्य था, किंतु महाराज ने स्वीकार नहीं किया, के असत्य भाव से उनका दूर। और वही कृष्ण ने कहा कि हमको गोकुल में पहुंचाओ और कहा देना कि हमको लड़की नहीं है लड़का नहीं है। वसुदेव जी जो परम सत्यवादि थे उन्होंने कृष्ण बात की बात को मान लिया और कहा कि हमको लड़की नहीं है लड़का नहीं है। बात अलग था सत्यता और असत्य का निर्णय करना ये साधारण बुद्धि का ये काम है। कृष्ण जो कुछ चाहते हैं वही परम सत्य है क्योंकि वो सत्य है स्त्री सत्य है सत्य की योनि है नीचे सत्य निकला है सत्य की पुष्टि करते हैं सत्य की रक्षा करते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं सत्य है उनकी वाणी सत्य है उनकी क्रियाएं सत्य है। इसलिए हम नए वाक्य जो है ये हमारे लिए इसका मतलब यह है कि पहले तो ये हुआ जैसे कृष्ण ही परम तत्व है शास्त्र प्रमाण है। दूसरा हुआ हरि ही परम तत्व हरि माने कृष्ण ये परम तत्व इसलिए वेद के परिषद से शास्त्र यह है। तो कहते हैं कि वेद में कहां कृष्ण का नाम है हरि नाम है सब कहते हैं सबल सबल माने क्या बल के साथ बल के साथ मैंने कौन समझे बल दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि जिसमें वो रहता है वो उसको हम देखते हैं। जैसे भी में जो बल है वो बल नहीं दिखाई देता उसका अनुमान कब करते हैं जब किसी को पछाड़ दिया कोई भाषेर को उखाड़ दिया तो कहते हैं ये बल यदि कोई को नहीं उखाड़ सकते तो सोचते हैं कि ये बलवान नहीं बल मोटा ताजा है बल नहीं इसलिए बल के साथ कृष्ण का बल कौन है राधा जी राधा जी के साथ ही जब होगा तो अवस्थी बात हरे कृष्ण दो प्रकार के शिष्य अर्थ शंकराचार्य ने व्यवहारिक जीत अर्थ में लिया है उसका अर्थ है जो कुछ पारमार्थिक क्रियाएं हैं कुछ व्यवहारिक हमें उसको मिलना ब्रह्म व्यवहारिक है उसका रूप है परमार्थिक रूप में उसका कोई व्यवहारिक रूप में ये सब देखा जाता है किंतु परमार्थिक रूप में बस एक ही परम सत्य है ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है जीवो ब्रह्म ही को ना पड़ा जगत मिथ्या है और जीव ये व्यवहार का व्यवहारिक जब हम भक्ति का साधन करते हैं तो इसको अपने व्यवहार में लाते हैं। ये जो व्यवहार है इसका तटस्थ लक्षण भक्ति का है भावना के द्वारा भीतर से अंतर से जो भगवान के प्रति प्रेम होता है ये तो है परमार्थिक व्यवहार परमार्थिक सत्य ये भावना के ऊपर में सब कुछ लेकर भगवान के प्रति ये दिखाई नहीं देता क्योंकि जिस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को प्रेम होता है तो प्रेम होने पर उसको कुछ खिलाया पिलाया प्रेम से जमिला का आंखों से आंखों की धारा दे ये सब कुछ व्यवहारिक जो दिखता है। जैसे भगवान के भजन तो आत्मा से होगा क्योंकि प्रारंभिक रूप में इसको पाने के लिए मुख से जो शास्त्र में दिए गए हैं गुरु के मुख से हमने जो सुना है उसका जब कीर्तन करते हैं तो ये व्यवहारिक रूप में वंदना इत्यादि है ये व्यवहारिक जब हम भगवान के विषय में कुछ सुनते हैं कान से और कोई ये गुरु बोलता है या कोई भक्त बोलता है तो सुनने में ये व्यवहारिक भगवान की कथाओं को सुनना ही ये व्यवहारिक समरण कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम असंग व्यवहार पाद सेवनम हम परिक्रमा कर रहे हैं ये भी व्यवहारिक है। इसलिए अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ किया जाता है भगवान की भक्ति के लिए प्रथम उसको व्यवहार इसलिए व्यवहार में प्रतिष्ठित होना चाहिए कुछ। अब ये इसका फल क्या होगा कम से भगवान में ममता बढ़ती जाएगी इन चीजों के द्वारा वो ममता दिखेगी नहीं। इससे होगा क्या, ये जो व्यवहारिक चीजें थी और भी प्रगाढ़ होती जाएगी और भावना को बढ़ाती जाएगी। भगवान अत्यंत ममता और आसक्ति
इसमें रहिए, इसलिए विष्णु बनाना पार धन कृष्ण है कई बारम्बार प्रणाम सदा मैं वंदन
और तुमको जो मैं पुस्तक पर भाव देता हूँ अपने हृदय में उसको उठा, नहीं तो तुम्हारी जो भक्ति इधर तक चली जाएगी, सड़क जाएगी। अब जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं तुमको देता हूँ, एकांत चित्त से हृदय में धारण करो, एकाग्र से तो भक्ति की तरफ में आगे बढ़े और वो सब चीजों को याद रखेगी। तुम्हारे लिए जो उनमें पढ़ा जो कुछ वो अनुकूल है तो ग्रहण करो, प्रतिकूल को छोड़ेगा। अनुकूल जो उसमें है भगवान का भजन करना चाहिए, ये ग्रहण करो, भगवान का चिंतन ये ग्रहण करो। किसका लिखा हुआ है? विश्व किस्त और पता हूँ क्या जी का पढ़ो, सुखदेव गोस्वामी जी का पढ़ो, नारद जी का पढ़ो, इसे से और जो आचार्य भक्ति के हुए हैं, मध्वाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, निम्बार्काचार्य हुए हैं, विष्णु स्वामी हुए, इनकी बात सुनो। और इन सब में भी अधिक तरह के चंद्र महाप्रभु की बात सुनी, महाप्रभु की बात समझने के लिए अब रूप गोस्वामी भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति गोस्वामी सुनती लिखी है,
गुरु के लिए परम सपत्ति परम रतन क्रय के पालन और अर्चुरा के बीच मेरी भाषा
महात्मा को देखते या किसी ऐसे भावपूर्ण चीज को देखे भक्ति में उत्कंठा होती, परंतु फिर और भौतिक प्रश्न आ जाता है या सांसारिक कोई हुआ है तो फिर वो उत्कंठा दब जाती है। तो ये सब किस तरह से उत्कंठा मेंटेन किया जा सकता है जिससे कि हमारी भावना और बढ़ती रहे भगवान
का वैशिष्ट एक चीज है और चित्त वृत्ति का बदलना एक चीज है। हम लोग की चित्त वृत्ति कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि इसका वैशिष्ट होगा कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी संयम कर रहे हैं, कभी चित्त कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे भावना से एक श्रेष्ठ करके भगवान से कर चित्त वृत्ति भगवान में ही लगी है, ये किसी भी विषय है, ये तो वैशिष्ट होगा। और बदलने का उसको कहते हैं जब अपने रूप से अपने मार्ग से कुछ दूसरा मार्ग पर चलने लगती है तो इसको
लक्ष्य बदल
नहीं करके यदि हम इधर उधर से कुछ दूसरे रूपों को ले रहे हैं इसको वैशिष्ट करें। और जब अपने लक्ष्य से कुछ अलग होकर से जब अलग चलने लगते हैं तो ये बदलना है। अभी हमारी चित्त वृत्ति भाव में अभी स्थाई भाव में नहीं आई, जब तक स्थाई भाव में नहीं आई निष्ठा नहीं हुई, स्थाई भाव तक जो गए अभी निष्ठा नहीं हुई तब तक बदल किसी चीज के वैशिष्ट को देकर के संबद्ध माधुर्य या किसी पूर्ण किसी की बात सुन करके वो अपनी दिशा बदल सकते, क्योंकि जब निष्ठा हो जाएगी तब नहीं बदल। इसलिए हमको जरूरत है अपनी भक्ति की निष्ठा में लाने, अनिश्चित होने में कभी लक पाएगी, जैसे दीप है ना हवा के झोंके में गड़बड़ हो जाता है, कभी बुझ नहीं जाता है, ऐसे कभी हो जाएगा, क्योंकि जब निष्ठा हो जाएगी निरंतर श्रवण करने से सौ दो प्रकार का एक सख्त रूप में किसी वैष्णव से निश्चित होता है और एक होता है वैष्णव के रूप में गुरु गोस्वामी इत्यादि के भागवत इत्यादि ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अवलोकन और अनुशीलन करने से कभी उसमें भी टीकाओं के साथ में यदि हो तो अच्छी तरह ये सब दो प्रकार है। यह वैष्णव भी दो प्रकार है, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत के माध्यम से ग्रंथ भागवत को समझने की चेष्टा, मैंने एक लाइन आपको दे दी, एक गीता दे दी, से सुने और कहा कि अब कोई समय चर्चा में सुने, आप अपनी तरफ से समझे, बिना निर्देश के बिना आदेश के आप उसको समझने की चेष्टा करेंगे, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जब भी रुकावट आएगी फिर मैंने निर्देश दे दिया आप कुछ सुन सकते हो, वो जो प्राप्त होती है किस चीज
समझाने के लिए
घर में क्या
कर दिया को दिखा देने,
वो जो पाया जाता है एक दिन भी बंद, हाँ कभी दो महीने के लिए बंद हो जाता है, कभी ग्यारह महीने कभी बंद, किसी चीज छुट्टियाँ भी देते हैं क्योंकि उसको छोड़ा नहीं जाता जब तक कि वो वहाँ पर उसमें उनकी उत्पन्न न हो जाए, वहाँ पर स्टैंडर्ड में न पहुँच जाए तब तक उसको
किसी को हिंदी में रुचि है तो किसी को संस्कृत में रुचि है, आपका सब्जेक्ट है
उधर में ले जाएगी मन की वृत्ति है, अब यही जब निर्मल होती जाएगी तो वो चित्त जो भक्ति है वो चित्त है, वो ठीक है, वो अपराधित है, उधर नहीं
महाराज जी आपने कृष्ण से लिया है ना, आप हमको कृष्ण का ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे आप करवाएंगे तो हमारे वृत्ति अपने आप इंटरनली बढ़ता चली जाएगी,
तो ये कौन सा होगा
जैसे महाप्रभु ने जो भागवत का बोला उन्होंने कहा कि श्रीधरी टीका को उन्होंने ज्यादा उन्होंने श्रीधरी एक
उसको समझाया
था
क्या किए भागवत के कैसे लिखा नारद जी की कृपा उन्होंने परीक्षण अंतर कर दिया उस परीक्षण के द्वारा भक्ति हुई और भक्ति के सारे तथ्यों को उन्होंने अपने अंदर में देखा आलोक किया और उसी को जीव कल्याण के लिए प्रकाश किया, इसलिए व्यास जी ने भागवत बनाई नहीं बल्कि देख करके उसको अनुभव करके उसको खुद को प्रकाश किया भागवत पहले से भगवान और पीछे से जो भागवत पढ़ते हैं व्यास जी की भावना उनके अंदर में नहीं है तो वो भागवत को नहीं समझे, अब व्यास जी की भावना को देगा कौन जो तो उनसे पाया है सुखदेव गोस्वामी से सुख गोस्वामी से मिला इसी तरह से परंपरा तक आज तक मिली, इसलिए उन चीजों को हम अनुशीलन करके उनके माध्यम से अब लीजिए शिखर स्वामी को, शिखर स्वामी और व्यास जी का एक भाव है कि नहीं है, तो मायावादियों को भक्ति में लाने के लिए उन्होंने वर्तामित न्याय सुख टीकाएं की एक्सप्लेनेशन दिया, वर्तामित मैंने क्या है जिस प्रकार से एक बांस के वो बंसी फैलाती है मछली पकड़ने के उसके अंत में डोरी बांध देते हैं और डोरी दस हाथ की रख देते हैं बीस हाथ की रख देते हैं उसके अंदर में लोहे का एक कांटा लगा दिया उसमें टेकिया या मांस मांस का टुकड़ा या कोई आटे का चीज उसमें लगा जब उसमें का झट उठ निकल निकलने के बाद में फिर इसलिए शिखर स्वामी ने कुछ अद्वैत वादियों को भक्ति के तरफ में लाने के लिए मायावाद का सूत देते हुए भक्ति का विचार दिखाया, महाप्रभु जी ने देखा इससे पहले और कोई टीका नहीं है क्योंकि महाप्रभु जी का विचार सुप्त भक्ति का था प्रेम का, इसमें उन्होंने अंत में उन्होंने पूरा किया है टीका और उद्देश्य भी वही था, किंतु बाहर उससे जो वो जो दिया है ना मन का टुकड़ा आया गया वो भ्रमित कर सकता है, वो भ्रमित कर सकता है साधारण लोग और भ्रमित किया ही है, इसीलिए अद्वैत वादी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ये अद्वैत फर्क अतः ब्रह्म और जीव का मिलन ही इसका एक मिल
जाएगा, अभी
सुनो इसके बाद में किंतु बात ऐसी है हमारे सनातन गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी ने महाप्रभु का विचार लेकर शिखर स्वामी को सम्मान देते हुए उन अंशों की व्याख्या की और व्याख्या करके उसकी भक्ति मैं उसको ले आया। यह विचार जैसे ब्रह्म और युवाद ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने ऐसा किया है यदि इसको ले लिया जाए तो उनके विचारों में नहीं मतभेद हो जाएगा, इसलिए वो जो पहले का जो व्याख्या है इसी श्लोक की व्याख्या में उनसे ले लिया जाए। इस तरह से उन्होंने निरीक्षण देकर के स्वामी के बहुत से ऐसे विचार हैं जो भक्ति के लिए प्रतिपादन कर सकते हैं ऊपर से, क्योंकि भीतर से उनका उद्देश्य नहीं है, उसको समझना पड़ा है। उन्होंने कल कहीं भी किया है निरीक्षण एक श्लोक है, जो भी चीज जगत में देखते हैं वो भगवान भक्ति है, जो कुछ है वो भगवान है, भगवान है हम लोग भगवान नहीं है, भगवान को किसी का एक्सप्लेनेशन हमारे जो काम हमारे बलवा चाहती है कुछ प्रतिवाद किया उसमें ये समझता है कि ये सिद्ध नहीं है, हम सुबह भी नाम देख सकते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि स्वामी के जो नाम आने से देखता करता है, सुबह स्वामी के जो नहीं मानता है भागवत के भीतर